हरे कृष्ण। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा पे हम चर्चा कर रहे थे पिछले चार प्रवचनों में, तो आज इसका अंतिम विभाग हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे प्रार्थना हो रही है कि गजेंद्र कह रहे हैं नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग, कि इस भौतिक जगत में जो वेग होते हैं काम क्रोध लोभ के, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना, या आत्मा का नाश करते हैं, ये तीन वेग है, ये असह्य है कहते हैं। तो इति असह्य हो के आप स्वामी है कहते हैं। शक्ति त्रयाखिल धी गुणाय, और ये तीन शक्तियां जो है वह हमारे धी, हमारे चेतना, हमारे बुद्धि पे कार्य करते हैं, और गुणाय वे बाहर तीन विषय जो इंद्रियों के विषय है, जो तीन गुणों के आधार पर प्रकट होते हैं, उनके द्वारा वो व्यक्त किए जाते हैं। प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये, तो ऐसे जो असह्य वेग है उनसे कौन बचाते हैं? आप अगर कोई शरण लेता है तो आप उनको बचाते हैं। दुरंत शक्तये, जो आपकी शक्ति है उसका कोई अंत नहीं है। कटिंद्रियाणा अनवाप्य वर्तमने, पर जिन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया है वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस श्लोक में तीन चीजें बताई जा रही हैं। एक है कि ये भौतिक वासनाओं का प्रवाह जो है, वेग है, वो असह्य है। दूसरा है कि अगर कोई भगवान की शरण जाता है तो भगवान उसका इन सब वासनाओं से भी संरक्षण करते हैं। पर तीसरा बता रहे कि जो इंद्रियों के नियंत्रण में है, जो इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, वह भगवान को जान नहीं करते। तो यहां पे ये सवाल उठता है कि कैसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति अगर शुरू करता है या आगे बढ़ता है। कि कई बार ऐसे कहते हैं कि हमें इंद्रियों पे अगर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो हम भौतिक चेतना में फंसे रहते हैं। भौतिक चेतना में फंसे रहेंगे तो आध्यात्मिक चेतना नहीं होती है, तो फिर हम भगवान को नहीं जान सकते, भगवत भक्ति का स्वाद नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जो भौतिक भोग है, जब तक हम वो छोड़ते नहीं हैं तब तक आध्यात्मिक रुचि नहीं आती है। पर दूसरी ओर से यह भी कहा जाता है कि जब तक आध्यात्मिक रुचि नहीं आती है तब तक हम भौतिक भोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आत्मा जो है हमेशा सुख चाहता है, सुख के बिना रह नहीं सकता है। तो इसीलिए परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जब हमको ऊंचा स्वाद मिलता है तो हम शांत हो जाते हैं। तो फिर इसमें क्या पहले आता है? तो क्या पहले हम भौतिक भोग छोड़ते हैं फिर आध्यात्मिक रुचि प्राप्त करते हैं, या पहले हम आध्यात्मिक रुचि प्राप्त करते हैं और फिर भौतिक भोग छोड़ते हैं? तो इसमें क्या पहले होता है? तो सबसे पहले क्या आता है? श्रवण। सबसे श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सारे भक्ति की विधि जो है उससे शुरुआत होती है श्रवण से। और भगवद गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति श्रुति परायण है, जो श्रवण के लिए आसक्त है, वह व्यक्ति जरूर इस भवबंधन के पार जा सकता है। अन्य तो मजानंत श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते पिचाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायण। जो श्रवण में आसक्त रहते हैं, भले ही वो भौतिक वो आध्यात्मिक अज्ञानी भी क्यों ना हो, पर अगर श्रवण करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। और केवल श्रुति परायण होने से, श्रवण करते रहने से क्या हो जाएगा? वह ते पिचाति तरन्त्येव मृत्यु, वे मृत्यु के परे चले जाएंगे, भवसागर के परे चले जाएंगे। प्रभुपाद जी भी अपने जो उन्होंने मार्की ने भागवत धर्म नाम का एक ग्रंथ लिखा, ने ग्रंथ नहीं कविता लिखी, जब वो जिन्होंने अमेरिका का कोस्ट लाइन, अमेरिका का तट पहली बार देखा, तो अपना चिंतन करते हुए, तो तभी भी वो बोलते हैं ऐसा ही भाव है कि रजस्तमो गुणेरा सबाई अच्छा न वासुदेव कथा रोजे नहीं से प्रसन्न। बोले कि ये सब लोग जो है रजो और तमोगुण से अच्छा देते हैं, इसीलिए वासुदेव कथा में उनको रुचि नहीं आएगी। तो और फिर अगर रुचि नहीं आएगी तो भक्ति कैसे करेंगे? वो कि भाव मुझे ले मुझे से ही रस, कि ये भक्ति का रस समझ कैसे पाएंगे? पर वहीं पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, भागवतेर कथा से तब अवतार धीर हया सुने जदि काने बार बार। कहते हैं हे प्रभु, भागवत की कथा जो है यह वास्तव में आपका अवतार है, और अगर कोई व्यक्ति सुनते रहेगा इसको धीर हया, वो धीर हो जाएगा। सुने जदि काने बार बार, अगर बार बार सुनते रहता है तो व्यक्ति धीर बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भले ही शुरुआत में हमें रुचि ना आए, तो साधारणतः जो जीव भौतिक जगत में है, अधिकांश लोग भौतिक चेतना में ही होते हैं, और भौतिक चेतना में जब होते हैं तो आध्यात्मिक रुचि ज्यादा नहीं होती है। तो फिर उनको, ऐसे जीवात्माओं को आध्यात्मिक रुचि देनी पड़ती है, उनको खुद को अपने आप नहीं आती है। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबरी में बताते हैं कि वास्तव में जो भगवत तत्वों में, भगवत भक्ति में, भगवत ज्ञान में जो श्रद्धा होती है वो दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, एक है स्वाभाविकी और दूसरी है बलेनोत्पादिता। स्वाभाविकी मतलब एक अंदर से ही व्यक्ति को आकर्षण है, श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द का मैं थोड़ा आगे विश्लेषण करूंगा धीरे धीरे, पर दूसरी जो बता रहे हैं क्या है, बलेनोत्पादिता। बलेनोत्पादिता मतलब कि कोई अगर बहुत महान भक्त होते हैं तो उनकी जो शुद्धता होती है, उनकी जो प्रेम में बरता होता है, उनकी जो करुणा होती है, उसके कारण लोगों को लगने लगता है कि जरूर इसमें कुछ सत्य है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डिवोशन इज डिवोटीज एंड द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ एथीज्म इज थीस्ट्स, नॉट एथीस्ट्स। भक्ति में वृद्धि भक्तों के द्वारा होती है, और नास्तिकता में अगर कोई बढ़ जाता है तो वो भी भक्तों के कारण ही होता है, वो भी धार्मिक लोगों के कारण ही होता है। अगर मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में हम भगवान को नहीं देख सकते, और भले ही कभी कभी हमें अनुभव हो जाए, ऐसे कई दुनिया में आजकल अमेरिका में और अभी भारत में भी आ रहे हैं कुछ लोग, कहते हैं उनको कौन कहते हैं कि आई एम SBNR। SBNR मतलब क्या, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, मैं आध्यात्मिक हूं पर धार्मिक नहीं हूं। क्यों कहते हैं ऐसे वो, कि वो कहते हैं आध्यात्म मतलब मैं कुछ और अनुभव करना चाहता हूं, कुछ देखना चाहता हूं, कुछ दुनिया के परे कुछ और है क्या मैं जानना चाहता हूं। वो उसके प्रति रिसेप्टिविटी, ओपननेस, उसके प्रति मैं अनुकूल हूं, मैं जानना चाहता हूं तो मैं स्पिरिचुअल हूं। पर लोग धार्मिक मतलब क्या सोच लेते हैं, रिलीजियस, कि आप कुछ अंधश्रद्धा रखते हो, आप कुछ बिना जाने रीति रिवाजों का पालन करते हो, और आप दूसरे धर्मों के प्रति नफरत करते हो, युद्ध करते हो, हिंसा करते हो, तो ऐसा मुझे नहीं बनना है। तो अभी जो भाव है इसमें क्या हुआ है, ऐसे लोगों का भाव जो भाव है वो सोचते हैं कि वास्तव में मुझे आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक दृष्टि ये प्राप्त करनी है, पर वो सोचते धर्म ये रीति रिवाजों से भरा हुआ, ये संकीर्णवादी है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जब सोचते हैं तो वो क्यों सोचते हैं, अधिकांश रूप से इसलिए होता है कि उन्होंने जो धार्मिक लोग देखे हैं वो धार्मिक लोग ज्यादा आध्यात्मिक नहीं थे। वो धर्म के रीति रिवाज तो करते हैं, पर रीति रिवाजों के साथ बाकी लोग जितने भौतिकवादी है उतने ही भौतिकवादी होते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे धर्म का एक नकाब जैसे है, कुछ रीति रिवाज कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला करते हैं कुछ लोग विग्रहों को दिखाते हैं ताकि कुछ दान प्राप्त कर सके, तो वो उनको विग्रह क्या है, वो एक धंधा बन गया है। तो ऐसा हर धर्म में होता है, जो भौतिकवादी लोग जब कुछ धार्मिक मार्गों में आ जाते हैं तो फिर वो अपना भौतिकवाद धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक मार्गों में लाते हैं, और फिर क्या होता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो देखते हैं कि वास्तव में ये क्या है जो तुम जो कर रहे हैं, बाकी दुनिया कर रही है वही तुम भी कर रहे हो। बाकी दुनिया भौतिक प्रगति चाहती है, भौतिक भोग चाहती है, वो अधार्मिक रूप से कर रहे, तुम धार्मिक रूप से कर रहे हो, फर्क क्या है उसमें। तो इसलिए जो लोगों को आजकल के पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्नाइज लोगों में, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, दे आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स। धार्मिक संस्थाओं में लोगों को रुचि नहीं है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति जो हमें उनसे संग करके लगता है कि ये वास्तव में ये प्रगतिशील वैष्णव है, उनके आदान प्रदान से, उनके बर्ताव से, उनके प्रवचनों से, उनके कार्यों से हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है, तो फिर क्या होता है, वो वृद्धि होती है। तो अभी इसका मतलब नहीं है कि इस धार्मिक संस्था या धार्मिक रीति रिवाज ये बुरे हैं, पर मेरा यहाँ पे कहने का जोर क्या है, हमारा विषय ये है कि हम भौतिक स्वाद से आध्यात्मिक स्वाद तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसमें मैंने कहा कि सबसे पहले श्रवण के द्वारा पता चलता है कि आध्यात्मिक स्वाद कुछ है, और फिर हम उसके बारे में थोड़ा खोज करने लगते हैं। तो ये होता कैसे है, ये प्रधानतया भक्तों के संग से होता है। तो अगर जो भक्त है, जो धर्म का पालन कर रहे हैं, जो आध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि वास्तव में उनको आध्यात्मिक रुचि है, वो आध्यात्मिक चीजों में आनंद ले रहे हैं, तो फिर हमें विश्वास होता है कि जरूर ये कुछ आध्यात्मिक सत्य है और मुझे इसकी खोज करनी चाहिए। इसके विपरीत जो अगर आध्यात्मिक या धार्मिक लोग हैं, अगर वो भी भौतिक भोग ही कर रहे हैं, तो फिर लोग सोचते हैं ये धर्म करने की जरूरत क्या है, भौतिक भोग ही करना है तो मैं इसके बिना भी कर सकता हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं चार पुरुषार्थ जो थे वैदिक संस्कृति में बताए गए थे, कौन से चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल के पाश्चात्य संस्कृति में, आधुनिक संस्कृति में लोगों को अर्थ और काम धर्म के बिना मिल जाता है। अभी स्थायी रूप से नहीं मिलता है, पर मिल जाता है। आप मेहनत करो, कुछ धंधा करो, नौकरी करो, वो पैसा मिल जाएगा, फिर उसके बाद में इंद्रियों मिल जाएगी। तो अभी जब अर्थ और काम धर्म के बिना अगर मिल जाता है, तो लोग बोलते हैं फिर धर्म की जरूरत क्या है, धर्म की जरूरत क्या है। और अगर लोग देखते हैं कि ये धार्मिक लोग भी अर्थ और काम के ही पीछे हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि अगर अर्थ और काम ही प्राप्त करना है, तो फिर वह धर्म के बिना मिल रहा है, तो हम तुम्हारे धार्मिक लोगों के आदेश का पालन क्यों करें, तुमने जो नीति तुमने जो नियम बनाए हैं, रीति रिवाज बनाए, उसका पालन हम क्यों करें। तो इसीलिए भागवत में बताया गया है, धर्मस्य या आपवर्गस्य ना अर्थो अर्थायोपकल्पते ना अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय विस्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। ये भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक है, दो श्लोक है ये। और प्रभुपाद जी एक बार एक प्रोफेसर थॉमस हॉपकिंस से बात कर रहे थे, और थॉमस हॉपकिंस ने कहा स्वामी जी आपने इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो अगर आपके सारे संदेश का अगर आपको सार बोलना हो तो आप क्या बताओगे। तो प्रभुपाद जी बताइए, दो श्लोक बताइए, पहले अध्याय के 8-9, दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक। क्या श्लोक है ये प्रभुपाद जी बताइए, धर्म का उद्देश्य धर्मस्य या आपवर्गस्य, आपवर्गस्य मतलब इस भौतिक जगत से परे जाना है, हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, आध्यात्मिक प्राप्ति करनी है। धर्म का उद्देश्य वो आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्मिक प्राप्ति है, ना अर्थो अर्थायोपकल्पते, अर्थ ये उद्देश्य नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो बताया गया है चार पुरुषार्थ कैसे है, एक तरह से ये प्रोग्रेसिव है, एक के बाद अगर धर्म करता है उसको अर्थ मिलता है, फिर काम की पूर्ति होती है, और फिर जब काम की पूर्ति होने से भी व्यक्ति को पता चलता है इसे भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो फिर वो मोक्ष की ओर जाता है। तो एक तरह से ये चारों एक के बाद एक आते हैं, पर साथ साथ इसमें एक और भाव ये है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसमें धर्म, अर्थ, काम में व्यक्ति अधिकांश रूप से भौतिक चेतना में रहता है, और इसलिए कई जन्मों तक व्यक्ति इसी में फंसा रह सकता है। तो इसलिए समझना कि धर्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, मोक्ष भी नहीं भक्ति में मोक्ष है वो, भगवत धाम की प्राप्ति, यह बहुत जरूरी समझना। धर्म से अपवर्गस्य ना अर्थो अर्थायोपकल्पते, धर्म से काम मिल जाएगा, धर्म से अर्थ मिल सकता है, पर अर्थ ये धर्म का उद्देश्य नहीं है। कैसे कोई भी हम कार्य करते हैं उसका एक प्रोडक्ट होता है, उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब जो प्रधान उसे मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट मतलब जो बाजू में उसे मिल जाता है कुछ। जैसे अगर कोई भक्त बन जाता है, कोई प्रचारक बन जाता है, तो अभी प्रचारक बन जाने से व्यक्ति को आदर मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। अभी व्यक्ति प्रचारक इसलिए नहीं बनना चाहिए कि उसको आदर सम्मान मिले, व्यक्ति को प्रचारक इसलिए बनना है कि वह खुद भगवान के करीब जा सके और दूसरों को भगवान के करीब जाने में मदद कर सके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नम्रता का मतलब यह है कि आप आदर प्राप्त करने की अपेक्षा से चिंतित नहीं होना चाहिए। नॉट हैव द एंग्जाइटी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ बींग ऑनर्ड बाय अदर्स, मुझे कितना लोग आदर करेंगे, कितना लोग आदर करेंगे। हाँ, आदर करेंगे तो बड़ा संतुष्ट मिलती है, इस कब मुझे आदर करने वाले हैं, ऐसे जो आकांक्षा रहती है, तो वो वैसा अगर हुआ तो नम्रता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते तो क्या है, ये उदाहरण इसे दे रहा हूँ कि कोई चीज का एक प्रधान उद्देश्य होता है और उसे बाजू में एक दूसरा फल भी मिल सकता है। तो प्रचार करने का प्रधान उद्देश्य है कि हम खुद भगवत की भगवान की कथा करते, हम भगवान के करीब जाए और दूसरों को भगवान के करीब जाने में मदद करें। उसके साथ साथ अगर कुछ नाम सम्मान मिल भी गया तो वो हम खुद के लिए लेते, जहां तक हो सकते भगवान के लिए अर्पण करते हैं, तो पर वो उसका उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे ही बता रहे हमें ना अर्थो अर्थायोपकल्पते, कि अर्थ ये उद्देश्य नहीं है। और अगर अर्थ मिल भी गया तो अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः, कि अगर अर्थ मिल भी गया तो उसको काम इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। और फिर हम सब में तो इच्छा तो है, काम का अर्थ कई बार हम काम ही शब्द है ये नकारात्मक भाव में लेते हैं, तो शारीरिक स्तर पे इंद्रियों का आकर्षण होता है उसको हम काम बोलते हैं। पर भागवतम में काम ये शब्द नकारात्मक रूप से भी लिया है और सकारात्मक रूप से भी लिया है। जैसे कि ऐसे बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज का जब राज्य था, तो जब वो इतना अच्छे धर्म से राज्य कर रहे थे कि सारी पृथ्वी, जो पृथ्वी के वासियों के इच्छाएं थी वो पूरी कर रही थी, तो कामम वर्ष पर्जन्यो, ऐसे बता रहे थे कि यार पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी और उससे जो भी लोगों की इच्छाएं थी वो पूरी हो जाती थी। तो काम क्या है, काम ये हमेशा नकारात्मक नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें काम जो है ये एक पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ मतलब ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। तो काम का कुछ सकारात्मक अर्थ हो सकता है, काम का नकारात्मक अर्थ हो सकता है। नो, नकारात्मक कब हो जाता है, वो नकारात्मकता हो जाता है जब वो इच्छा के प्रभाव में आकर हम भगवान को भूल जाते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों के खिलाफ कार्य करने लगते हैं। मतलब जब वो काम की पूर्ति ही हमारे जीवन का सर्वस्व बन जाता है और उसके लिए हम बाकी सब त्याग देते हैं, तो फिर वो काम वो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। पर हम आत्मा का एक स्वभाव है इच्छा करना, और वह इच्छा करने की स्वभाव जो है उसका नाश नहीं किया जा सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं डिजायर्स कैन बी क्योर्ड, दे कांट बी किल्ड, कि जो इच्छाएं हैं उनका हम मार नहीं सकते, हम उनका इलाज करके उनको ठीक कर सकते हैं। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रलोभन की इच्छाएं हैं उनको हम अगर ठीक करते हैं तो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, उसकी इच्छाएं जागृत हो जाती है। वो जब इच्छाएं जागृत हो जाती है तो वो वास्तव में हमें भक्ति में प्रगति करने में मदद करती है। द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज नॉट सो मच अबाउट गिविंग अप डिजायर्स एज अबाउट टेकिंग अप डिजायर्स, इच्छाओं को त्यागना ये भक्ति का सार नहीं है, इच्छाओं को लेना यह भक्ति का सार है। इच्छाओं को स्वीकार करना, इच्छाओं को स्वीकार करना मतलब क्या, ऐसे हम गुरु पूजा में गाते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करि आइक्य, जो जो हमारे गुरुदेव ने हमें आदेश दिया है, जो उपदेश दिया है उसको स्वीकार करना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। अभी महान भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक महान वैष्णव थे और उनके जो शिष्य थे वे भी महान वैष्णव थे, बड़े पंडित थे, बड़े समर्पित थे, और उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को पूरे भारत भर में 64 मंदिर बनाने में मदद की। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के चले जाने के बाद गौड़िया मठ में थोड़ा झगड़ा हो गया और सब गौड़िया मठ कुछ कार्य नहीं कर पाया, एक तरह से वो सत्य है, वो दैट इज ओवर सिंप्लीफिकेशन, काफी काफी जो हुआ वो जटिल था, पर इसका भले ही उनमें कुछ झगड़े हो गए और गौड़िया मठ प्रचार नहीं कर पाया इतना अच्छी तरह से बाद में, इसका मतलब नहीं है कि उनके जो शिष्य थे वो अच्छे शिष्य नहीं थे। जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर जीवित थे तो तभी प्रभुपाद जी, या आपने उनको अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारी में ज्यादा लगे थे हो, तो उनको डायरेक्टली भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मदद करने में वो डायरेक्टली मदद नहीं कर पा रहे थे। तो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने लगभग 1921 से 1934 तक 13 सालों में 64 केंद्र भारत में बनाए, 1919 में चालू किया संस्था, तो 15 सालों में वे 15 सालों में 64 केंद्र बनाना ये बहुत बड़ी बात है, और ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर की प्रेरणा है, पर उनके शिष्यों ने उनको मदद की थी, उसके कारण ही तो वो हुआ। तो उनके शिष्य भी महान भक्त थे, पर उनके गुरुदेव के गुजर जाने के बाद कैसे एक साथ रहना है वह समझ नहीं पाए, उसका भी कारण है, उसमें हम नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे मेरा कहने का भाव यह है, उद्देश्य है, मैं पॉइंट ये बोल रहा था कि भक्ति मतलब इच्छाओं को त्यागना नहीं है, भक्ति का भाव है इच्छाओं को लेना। तो क्या हो गया, जब ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर गुजर गए और फिर वो सारे गौड़िया मठ में के नेताओं में थोड़े झगड़े होने लगे, तो उन सब ने सोचा कि हमने जो हमारा मठ बनाया है उसको बरकरार रखें, जो लोग यहाँ पे आ गए उनको प्रचार करेंगे, और बहुत से भक्त जो वो विरक्त हो गए, बोले संस्था बनाते हैं इस झगड़े होते हैं सब छोड़ दो, ये हम सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे, और अब अपनी भक्ति करते रहे प्रामाणिकता से, बहुत से भक्त। तो पर प्रभुपाद जी की विशेषता क्या थी, प्रभुपाद जी ने उनके गुरुदेव ने जो आदेश दिया था वो आदेश को, क्योंकि पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करो, उस आदेश को अपने जीवन का ड्राइविंग फोर्स बना दिया, अपने जीवन को आगे चलाने के लिए वो उन्होंने अपना अपनी प्रधान इच्छा बना दी। तो प्रभु व्हाट डिफरेंशिएटेड प्रभुपाद फ्रॉम हिज गॉड ब्रदर्स वॉज हाउ ही टुक अप द डिजायर ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर, नॉट दैट ही जस्ट गेव अप द डिजायर्स फॉर वर्ल्डली प्लेजर, कि भौतिक इच्छाओं का त्यागना यह एक चीज है भक्ति में और उसका महत्व है, पर उससे महत्वपूर्ण क्या है कि जो आध्यात्मिक इच्छाओं को स्वीकारना। प्रभुपाद जी ने मुझे किसी न किसी तरह प्रचार करना है, पाश्चात्य देशों में जाना है, वह जिम्मेदारी ले ली, और उसके कारण सारे विश्व भर में प्रचार हो गया। जब अगर हम प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया। अभी इस साल मैं प्रभुपाद जी, मैं कई बार मैं वीडियोज वगैरह बनाता हूँ, तो अभी मैं प्रभुपाद जी के जीवन पे, पूरे जीवन पे एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, वीडियो ऑडियो सीरीज, देखो 50-60 लेक्चर हो गए, तो अभी मैंने 15-16 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आया मैं यहाँ पे, और प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे पे शुरुआत किया, यूट्यूब पे है वो, और तभी मैं प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में पढ़ रहा था, पहले भी पढ़ा था पर अभी जब पढ़ रहा था तभी विचार आया कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, अभी मैं भी अमेरिका में जा रहा हूँ प्रचार कर रहा हूँ, तो वास्तव में जब अभी कोई प्रचारक जाता है पाश्चात्य देश कहीं भी जाता है तो पहले से मंदिर है, भक्त है, फिर वहाँ पर जो मंदिर है भक्त है वो कार्यक्रम, वो ट्रैवल का योजना कर देते हैं, वो प्रोग्राम अरेंज कर देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अभी भक्त को जाके सिर्फ बात करना है। पर प्रभुपाद जी जब गए उनको सब कुछ खुद करना था, सबसे पहले उनको जाके एक स्पॉन्सर लाना पड़ा जो उनको वहाँ पे वीजा देगा, फिर स्पॉन्सर आ गया, फिर उनको जाके किसी से जाके पैसे लाने पड़े, तो वो तो सुमती मुरारी जी जो थे उनके उनके ऑफिस के बाहर 6 घंटे प्रभुपाद जी बैठे थे तो पैसे मिले। उसके बाद में वो जब अमेरिका जा रहे थे तो उनको सेंड ऑफ करने के लगभग कोई भी नहीं था, 5-6 लोग थे ऐसे ही आ गए थे उनके, और फिर वो अकेले गए, और वहाँ पे जाने के बाद भी वो जो जिनके घर में जाकर रह रहे थे गोपाल अग्रवाल, वो वास्तव में उनको कोई खुद आध्यात्मिक रुचि थी ही नहीं। उनके पिता ने बोला था कि कोई साधु आने वाले, आप उनको स्पॉन्सर कर लो। उसके पहले ऐसे 10 साधुओं के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया था और कोई भी साधु आया नहीं था। तो उनको लगा था कि कोई नहीं आने वाला है। तो फिर रोबा जी आ गए तो फिर वो आश्चर्य में क्या करे अभी, वो कैसे हमारे घर में, छोटा सा घर था उनका। तो प्रभुपाद जी जब उनके घर में थे तो पहले 5-6 दिन तक उनके घर के कोच पे प्रभुपाद जी सोए। फिर बाद में वो बोले कि, तो बाद में उनको लगा कि ये सही नहीं है स्वामी जी, ये वृद्ध है कैसे। तो उन्होंने एक दूसरा एक रूम लिया। तो प्रभुपाद जी उस रूम में रहते थे और उस रूम में कुछ भी नहीं था, एक केवल एक कमरा था और एक बाजू में बाथरूम था। तो वहां पे रहते थे और फिर सुबह उठ के प्रभुपाद जी यहाँ पे आते थे, यहाँ पे किचन था, यहाँ पे कुकिंग करते थे। तो सब कुछ प्रभुपाद जी को खुद करना पड़ा। और फिर जब वो प्रचार करने लग गए तो खुद ही कहाँ प्रचार करना है, वो कमरा लेना या जगह लेना, उसके लिए पैसे प्राप्त करना, फिर अगर कोई लोग आने वाले हैं तो उनको उनको बुलाना, प्रभुपाद जी का पब्लिसिटी करने के लिए भी पैसा नहीं था तभी। हयग्रीव प्रभु बोलते हैं कि जब एक बार वो प्रभुपाद जी से मिले, हयग्रीव प्रभु प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ भक्त थे और वो प्रभुपाद जी का इंग्लिश एडिटिंग करते थे। तो उन्होंने देखा कि वास्तव में वो थोड़ा, प्रभुपाद जी को बोले मैं आपको टाइपिंग में मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कुछ पेजेस टाइप कर दिए और फिर प्रभुपाद जी बोल, स्वामी जी कुछ और टाइपिंग के लिए है, प्रभुपाद जी आओ बोले। प्रभुपाद जी ने पूरा एक अलमारी खोला और पूरा ऐसे नोट से भरा हुआ था। और वो ऐसे था कि हम जो अगर किसी किताब में लिखते, पेपर में लिखते क्या, हम दोनों साइड में मार्जिन रखते। पर प्रभुपाद जी का पैसे की इतनी कमी थी कि वो जब पेपर पे लिखते थे तो कुछ मार्जिन भी नहीं रखते थे, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक, क्योंकि पैसे बचाना था। और यहाँ तक उन्होंने, और हयग्रीव ने देखा कि वो जो उसमें से जो जो पेजेस थे उसमें से अधिकांश लगभग 20-30% पेजेस वो पेजेस नहीं थे, वो क्या थे, जो एनवलप थे। प्रभुपाद जी ने एनवलप को खोला था और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे भारत में, तो एनवलप को खोल के, एनवलप के एक साइड में एड्रेस होता है पर दूसरा साइड पूरा ब्लैंक होता है, तो उसको खोल के उसको चिपका के उसको पेज बनाया था और उस पर उन्होंने लिखा था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत करके तो सब कुछ वो खुद कर रहे थे। तो खुद प्रचार करना तो एक ही बात है, खुद कहाँ प्रचार करना है, वो जगह ढूंढना, खुद लोगों को बुलाना। प्रभुपाद जी के पास अभी किसी को बुलाने के लिए प्रमोशन करना पड़ता है, पब्लिसिटी करनी पड़ती है, तो फिर पब्लिसिटी करने के लिए भी कुछ पैसे नहीं था। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, वो खुद ही न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के शहरों पे घूमते थे। तो क्या था उनके लिए, घूमते थे मतलब जस्ट गो फॉर लॉन्ग वॉक्स। और तभी क्या, जब प्रभुपाद जी उस समय अमेरिका में एक भारतीय स्वामी भगवे वस्त्र में थोड़ा विलक्षण दृश्य था, तो तभी उनको लोग मिलते थे और कौन, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरह से पूछा। प्रभुपाद जी बोलते मैं यहाँ पे मेरा एक जगह है, यहाँ पे मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, आप आ जाओ कार्यक्रम को। तो फॉर तो प्रभुपाद जी खुद चलते चलते घूम के, खुद के वॉकिंग से वो अपने प्रोग्राम का पब्लिसिटी कर रहे थे। और प्रभुपाद जी के पहले समर्पित भक्त जो आए, बहुत से लोग आए गए, वो सिर्फ कैसे थे, वो इंग्लिश एक वर्ड आता है स्पिरिचुअल शॉपर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स। स्पिरिचुअल शॉपर्स मतलब क्या, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, इस दुकान ने अच्छा ले लिया ले लो, उस दुकान में वो अच्छा लगा वो ले लिया, और उस दुकान में अच्छा लगा वो ले लो। तो बहुत से लोग आध्यात्मिक शॉपर्स रहते हैं। शॉपर मतलब क्या, कि ठीक है ये गुरु से ही अच्छा लगता है, ये संस्था से ही अच्छा लगता है, ये किताब से ही अच्छा लगता है, तो जो चाहिए वो ले लो और खुद की अपनी खिचड़ी बना लो और उसको स्वीकार करो। एक बार मैं अमेरिका में था तो उन्होंने मुझे एक रिलीजियस टॉक शो आया था, तो उसमें एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम, एक जू, वो सब सवालों के जवाब दे रहे थे। तो फिर उसमें एक किसी ने सवाल पूछा कि एक आई डोंट बिलोंग टू एनी चर्च, मैं किसी चर्च से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर मुझे जीसस के बारे में एक सवाल है। तो फिर वो क्रिश्चियन ने पूछा, तो कॉशियसली पूछा कि आप किसी चर्च से जुड़े क्यों नहीं हो अब तक। तो उसने जवाब दिया, आई हैव नॉट फाउंड एनी चर्च विच एग्रीज विथ माई फिलोसफी। मेरा जो तत्वज्ञान है उससे जुड़ने वाला अभी तक मुझे कोई चर्च मिला नहीं। मतलब मैं चर्च में तत्व ज्ञान सीखने के लिए जा रहे हो रहा हूँ, मुझे मेरा अपना तत्व ज्ञान है, अगर कोई चर्च में तत्व ज्ञान जुड़ता है तो मैं वहां पर जाऊंगा। तो ये क्या है? स्पिरिचुअल शॉपिंग है। मतलब मुझे जो चाहिए वो मुझे प्राप्त करना है। हम जो देखो शॉपिंग करने का भाव, और हम शॉपिंग करने जाते हैं और स्कूलिंग करने जाते हैं, स्कूलिंग मतलब पढ़ाई करने जाते हैं, तो दोनों का भाव अलग है। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारी इच्छाओं के अनुसार हम चुनते हैं, तो जब हम स्कूलिंग के लिए जाते हैं तो हम पाठशाला में जाते हैं और जो हमें टीचर सिखाते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो हम जब आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो शॉपिंग के भाव से हम प्रगति नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जो करते हैं वो स्कूलिंग है, वो हमें पढ़ाई करना है। तो पहले जो प्रभुपाद जी के पास लोग आए थे वो कुछ ऐसे, वो सब शॉपिंग के लिए आए थे, ये अच्छा लग गया, अच्छा ठीक है, ये अच्छा लगता है, मुझे नहीं करना है। तो हम सबको भी हो सकता है कि जब मंदिर में आते हैं कुछ चीज, कुछ जो जो कुछ तत्व ज्ञान अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें जो हमको इतनी अच्छी लगती है, पर हम उनको ठुकराते नहीं, हम समझते हैं कि मुझे और प्रगति करनी चाहिए और बुद्धि से समझना चाहिए, फिर ऐसे क्यों हो रहा है, और ये अभी मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, ये अच्छी बात है पर मेरा अभी स्तर नहीं, मैं कर नहीं पा रहा, मैं बाद में करूँगा, ये हम उसको ठुकराते नहीं है। तो क्या था, तो प्रभुपाद जी जब ऐसे रास्ते पे चल रहे थे तभी पहली बार उनको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सीरियस सीकर था। तो ये है प्रभुपाद जी रास्ते पे चल रहे थे और दूसरे साइड पे एक व्यक्ति चल रहा था, उसने देखा यहाँ पे न्यूयॉर्क के शहर पे स्वामी जी कैसे दिखो नहीं है। वो हॉवर्ड व्हीलर जो हैग्री प्रभु बने बाद में, वो भारत में गए थे किसी गुरु को ढूंढने को। अभी कोई अमेरिका से भारत में गुरु ढूंढने जाता है मतलब काफ़ी सीरियस है वो, और उनको भारत में कोई कोई अच्छे गुरु नहीं मिले थे, तो इसलिए वापस हताश होकर अमेरिका आ गए थे। तो क्या हुआ था उनके लिए, भारत में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे गुरु थे जो बहुत आध्यात्मिक प्रगतिशील ऐसे है ऐसे लग रहे थे, पर वो इंग्लिश जानते ही नहीं थे, तो इसीलिए उनसे कुछ सीख ही नहीं पा रहे थे। और जो तथाकथित आध्यात्मिक जो इंग्लिश जानते थे वो उनको लगा कि तो ये थे कि दे आर नॉट स्पिरिचुअल टीचर्स, दे आर सिंपली रिलीजियस बिजनेसमैन, कि ये धर्म के नाम पे पैसा कमा रहे, तो उनसे कुछ प्रेरणा नहीं मिली, इसलिए हताश होकर वापस आ गए। तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, ये कोई स्वामी जी यहाँ पे है क्या? बोला कि मैं नशा लेता हूँ कि नशे के कारण कुछ दिख रहा है क्या मुझे? तो फिर वो रुक गए, फिर बाद वो रास्ते से बड़ा बस गया, अच्छा अभी बस चला जाएगा तो वहाँ पे स्वामी जी हो गए कि नहीं, ठीक है। तो स्वामी जी वहाँ पे थे और कोई जो स्वामी है वो रुक गए उनकी ओर देख रहे हैं, वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर पुनः देखा गढ़ बस गई, एक और बस गई, पर देखे वहाँ पे अभी तक स्वामी जी है। फिर वो दौड़ते हुए चले गए उस, और फिर ने पूछा कि हाँ स्वामी जी, आर यू फ्रॉम इंडिया, क्या आप भारत से हो? हाँ प्रभुपाद जी बोले, और क्या आप भारत से हो? नहीं मैं भारत जा रहा हूँ, और वो बात करने लगे। और फिर वो और उनके मित्र थे कीथ, वो दोनों प्रभुपाद जी के बड़े प्रामाणिक शिष्य बन गए, और फिर धीरे धीरे संस्था बढ़ने लग गई। तो मैं ये कहने का भाव ये था कि प्रभुपाद जी के पास कुछ भी सुविधा नहीं थी, क्या सब कुछ सुविधा का निर्माण उन्होंने खुद किया, खुद जगह ढूंढी, खुद लोगों को ढूंढा, खुद वो कुकिंग करते थे, और न केवल खुद कुकिंग करते थे, ये क्या है पाश्चात्य देशों में लोगों को घर में कुकिंग करते हैं तो फिर अपने प्लेट धोते हैं, वो कहीं बाहर कुकिंग करते हैं तो होटल जैसे है, तो वो खुद प्रसाद लाके ले लेते थे और चले जाते थे, और प्रभुपाद जी उनके प्लेट धोआ करते थे, सब कुछ प्रभुपाद जी किया करते थे। तो कुछ भी सुविधा नहीं थी, पर प्रभुपाद जी क्यों ये सब कर पाए? क्योंकि उनकी इच्छा बहुत प्रबल थी। प्रभुपाद जी की भक्ति ही की विशेषता ये नहीं है कि उनका बहुत बड़ा वैराग्य था, हाँ वैराग्य था, पर दुनिया को छोड़ना ये भक्ति का एक भाग है। पर खास करके जब प्रचार की संस्था है तो उसमें हमें दुनिया में ही कार्य करना है, और उसके लिए जो भगवान की सेवा की इच्छा को स्वीकार करना और महत्वपूर्ण है। तो फिर भगवान की सेवा की इच्छा क्या है और कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ, वो इच्छा अगर अगर हम प्रबल कर रहे थे हमारे जीवन में, तो फिर क्या होता है, उस इच्छा के द्वारा जो दूसरी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, वह कम होने लगती हैं। मटीरियल डिजायर्स कांट बी ड्रिवन आउट ऑफ आर कॉन्शियसनेस, बट दे कैन बी क्राउडेड आउट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस. भौतिक इच्छाएं जो है वो उनको हम बोलेंगे अरे मैं इसके बारे में विचार नहीं करूंगा, मैं इसके बारे में विचार नहीं करूंगा, ये इच्छा क्यों, इसको निकाल दूंगा मेरे से. हम निकाल नहीं सकते. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम मंदिर में नहीं चाहते आने को, वो आ गया तो हम उसको ढकेल सकते हैं बाहर, पर मन में कोई विचार आ गया तो विचार को बाहर ढकेलना इतना आसान नहीं है. वो आ गया तो आ गया. ये साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक है वो इसको कहते हैं रिवर्स इफेक्ट प्रिंसिपल, कि जो आप चाहते हैं उसका विपरीत है. वो कहते हैं कि टू नॉट टू डिसाइड टू नॉट थिंक ऑफ अ थिंग इज टू थिंक ऑफ दैट थिंग. अगर मैं सोचता हूं मैं इस चीज का विचार नहीं करूंगा तो कैसे, अगर मैं बोलूंगा मन और शरीर में फर्क यह है, अगर मैं बोलूंगा मैं इसको छूंगा नहीं तो मैं सोच मैं ये मेरे से दूर है, मैं नहीं छूंगा उसको. पर अगर मैं सोचता हूं मैं विचार नहीं करूंगा इसके बारे में, तो वो न कर उस चीज के बारे में विचार नहीं करूंगा, इस विचार में भी उस चीज का विचार है ही. गेटिंग दिस जो बोल रहा हूं, जब हम बोलते हैं कि मैं इस चीज का विचार नहीं करूंगा, अगर मैं बोलता हूं कि मैं एकादशी को खाने का विचार नहीं करूंगा, ठीक है, पर मैं खाने का विचार नहीं करूंगा, उसमें खाने का विचार आ गया है अपने आप, तो ये शुरुआत हो सकती है मैं खाने का विचार नहीं करूंगा. पर उसके बाद में क्या है, मुझे किसी और चीज का विचार करना है, और उस विचार में जब मैं लग जाता हूं तो फिर ये खाने का विचार बाहर निकल जाएगा. तो डिजायर्स कैन नॉट बी ड्रिवन आउट, दे हैव टू बी क्राउडेड आउट. मतलब हमारे मन को जब हम भगवान की स्मरण से, भगवान की सेवा की इच्छाओं से भर देते हैं तो बाकी इच्छाएं बाहर चली जाती है. तो प्रभुपाद जी की इच्छा क्या थी कि वो अपने अपने चेतना को इतनी सारी इच्छाओं से भर दिया था. तो जब ये हैग्रीव प्रभु प्रभुपाद जी से मिले और प्रभुपाद जी की पूरी अलमारी भरी थी मार्जिन से मार्जिन तक लिखे हुए नोट्स, तो बोले स्वामी जी दिस इज अ लाइफ टाइम ऑफ वर्क. तो उन्होंने पूछा था कि एक दो घंटे का थोड़ा और टाइपिंग होगा, अरे तो जिंदगी भर के टाइपिंग का काम हो गई. प्रभुपाद जी बोले मेनी लाइफ टाइम्स ऑफ वर्क. एक जिंदगी नहीं, बहुत जिंदगियों का समय काम है ये. तो ये जो है, हम जो भक्ति करते हैं, तो हमारा मूल विषय ये था कि जो हमको आध्यात्मिक रुचि प्राप्त करनी है और भौतिक भोग की इच्छा छोड़नी है, तो शुरुआत कहां से होती है इसकी. तो पहले हम भौतिक भोग छोड़ते हैं और फिर आध्यात्मिक रुचि प्राप्त करते हैं, या पहले आध्यात्मिक रुचि प्राप्त करते हैं और बाद में भौतिक भोग छोड़ते हैं. तो मैं बता रहा था इसकी शुरुआत होती है श्रवण से, शुरुआत होती है भक्तों के संग से. इसकी शुरुआत होती है न केवल सिर्फ श्रवण करने से नहीं, सिर्फ भक्तों के संग से नहीं, पर श्रवण और भक्तों के संग में आध्यात्मिक इच्छाएं हमारे हृदय में जागृत होती है. तो संग का प्रभाव क्या होना चाहिए, श्रवण का प्रभाव क्या होना चाहिए. सिर्फ शारीरिक रूप से अगर हम किसी के पास आते हैं या एक ही कमरे में आ जाते हैं, एक ही घर में आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस व्यक्ति का संग कर रहे हैं. हो सकता है, बट द एसेंस ऑफ एसोसिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ डिजायर्स. संग का सार अर्थ क्या है कि इच्छाओं की प्राप्ति करना. अगर हम भक्तों के संग में आते हैं, भक्तों के हृदय में ज्वलंत इच्छा होती है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान का श्रवण करना है, भगवान के बारे में प्रचार करना है, तो उनके संग से अगर हमारे हृदय में वो इच्छा आ जाती है तो हम भक्तों का संग कर रहे हैं. अगर हम भक्तों के संग में आके देखते हैं, अरे ये भक्त देखो मंदिर में सो रहा है, देखो ये भक्त कितना खाता है, देखो ये भक्त क्या है, हमेशा मंदिर में आके दूसरों में दोष देखते रहता है, मैं आके वही कर रहा हूं पर मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा सबको दोष देखते रहता है. कुछ भक्त आते, मैं जब पुणे में था, एक भक्त आते थे रोज सुबह श्रृंगार आरती के दर्शन के आते थे रोज सुबह, और श्रृंगार आरती का जैसे ही दर्शन हो जाता था सीधा पुजारी डिपार्टमेंट जाते थे और पुजारी को बोलते थे अरे तुमने ये ड्रेसिंग में ये डेकोरेशन अच्छा नहीं किया, ये बराबर नहीं किया, ये बराबर नहीं किया. रोज का रीति रिवाज था उनका. तो क्या था, वो दर्शन भगवान को देखने के लिए आ रहे थे, वो भगवान के श्रृंगार में क्या गलती हुई है वो देखने के लिए आ रहे थे. तो अभी ये जो भाव है वह ज्यादा उचित नहीं है। तो भक्तों के संग में भी कुछ भक्त ऐसे हो सकते हैं, उनके कुछ गलतियां करते हैं, उनके अपने अपने कंडीशनिंग्स हैं, उनके अपने अपने कमियां हैं, तो वो सब है। पर मैं भक्तों के संग में क्यों आ रहा हूं? भक्त का संग जो हम कहते हैं, तो भक्त भी अलग अलग दर्जे के होते हैं, अलग अलग श्रेणी के होते हैं, अलग अलग समर्पण के होते हैं। तो मुझे मैं अगर भक्तों के संग में क्यों आ रहा हूं, मैं इसलिए आ रहा हूं कि मुझे मेरी भक्ति में वृद्धि करनी है। मैं दो उदाहरणों के साथ अभी अंत करता हूं इसका, कि भौतिक उदाहरण है पर यह आध्यात्मिक तत्व है। इसके लिए प्रभुपाद जी संग के लिए उदाहरण देते हैं उपदेशामृत में, कि जैसे कोई अगर बिजनेसमैन होगा तो वो बिजनेसमैन अपना कोई बिजनेस चेंबर बना देता है ताकि सारे बिजनेस लोग एक साथ में आए और फिर वो बातचीत करके कुछ पॉलिसी बना सकते हैं और सर अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस में साथ में आके स्टॉक एक्सचेंज बनाते हैं, एक स्टॉक बना लेते हैं। तो अभी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि सब लोग आते क्यों है वहां पे, उनको अपना पैसा बढ़ाना है। मैं 10,000 रुपए डालता हूं तो मेरी इच्छा है कि 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए। तो पर अभी स्टॉक एक्सचेंज में जब हम आते हैं, हमारा पैसा हम डालते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे पैसे को बढ़ाना। पर सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में आके अपने आप पैसा बढ़ने वाला नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग प्रकार के ब्रोकर हो सकते हैं और कुछ ब्रोकर ऐसे हो सकते हैं, कुछ दलाल ऐसे हो सकते हैं जो एक्सपर्ट है और जानते हैं आप यहां पे पैसा डालो फिर आपका पैसा बढ़ जाता है और हम देखते हैं पैसा बढ़ जाता है। पर कुछ ऐसे दलाल हो सकते हैं जो वहां पे दूसरों का पैसा फंसाने के लिए आए, तो हम उनको अगर पैसा देंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। या फिर कुछ ऐसे दलाल हो सकते हैं जो बेईमान नहीं है पर वो अभी तक एक्सपर्ट नहीं है, दक्ष नहीं है, तो उनमें हम उनको पैसा डालेंगे तो क्या होगा, उसका ज्यादा पैसे की वृद्धि नहीं होगा। तो उसी तरह से जो भक्तों का संघ है, भक्ति की संस्था है, वो मान लीजिए एक भक्ति का स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो हम सबके हृदय में थोड़ी बहुत भक्ति है, थोड़ी बहुत श्रद्धा है, वो आके हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे भक्ति के स्टॉक को हमें और बढ़ाना है। तो जब कोई स्टॉक एक्सचेंज में जाता है तो उसके पैसे की वृद्धि करना यह उसके खुद की जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं बोल सकता मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया अभी वो स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि मेरा पैसा बढ़ा दे, नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक उसी तरह से जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग में आता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति को बढ़ाना। तो कई बार ऐसे धर्म के नाम पे लोग होते हैं जो वास्तव में धार्मिक कार्य नहीं कर रहे होते, वो धर्म के नाम पे अपना धंधा कर रहे होते। ऐसे लोगों का संग करेंगे तो कहा होगा, अरे हमारी श्रद्धा का नाश हो जाएगा, तो हमें ऐसे लोगों से संग नहीं करना है। भक्तों के संग में भी अगर आते हैं हम तो भक्त अलग अलग श्रेणी पे होते हैं। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं वो इनएक्सपर्ट अदक्ष दलाल के समान है, तो उनका हम ज्यादा संग करेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति की ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। कभी क्या होता है, हम भक्तों के संग में आते हैं पर भक्तों के संग में जो भक्त ज्यादा गंभीर नहीं है भक्ति में, जो ऐसे ढीली भक्ति कर रहे हैं, अभी उनकी उनका हमको उनको जज नहीं करना है वो ढीली भक्ति क्यों कर रहे हैं, पर वो उनकी परिस्थिति हो सकती है, उनकी मनस्थिति हो सकती है, जो भी है, पर अगर हम उसका संग करते रहेंगे तो हमारी भक्ति ढीली रहेगी। अगर हमारी परिस्थिति मनस्थिति ऐसी है कि हम वैसे ही भक्ति कर सकते हैं तो उतने स्तर पर भक्ति करना अच्छा है बिना भक्ति न करने के। पर हमें समझना है कि जैसे मैं अगर स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा हूँ तो मुझे मेरा पैसा बढ़ाना है, तो वैसे मैं मंदिर में आ रहा हूँ, भक्तों के संग में आ रहा हूँ, तो मुझे मेरे भक्ति का स्टॉक बढ़ाना है, और मेरे भक्ति का स्टॉक बढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कौन से भक्तों के संग के द्वारा मुझे प्रेरणा मिलती है, कौन से भक्तों के संग के द्वारा मेरी आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ती है, कौन से भक्तों के संग के द्वारा मुझे और श्रवण करने की, और विग्रहों की सेवा करने की, और प्रचार करने की, और ग्रंथों के वितरण करने की, और अलग अलग प्रकार की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है, तो उन भक्तों का संग मुझे प्रधान रूप से लेना है। तो दूसरे भक्तों का संग लेना, ऐसे नहीं उनका अनादर करना है, पर हमें हमारा उद्देश्य क्या है ये स्पष्ट रखना चाहिए। अगर हम उद्देश्य भूल जाते हैं तो भक्तों के संग में भी हम गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि क्या गुमराह हो जाएंगे, अरे ये भक्त ऐसे कर रहा है, वो भक्त वैसे कर रहा है, वो भक्त वैसे कर रहा है, तो मैं भी ऐसे कुछ भी करते रहूंगा। नहीं, हमारे आध्यात्मिक प्रगति ये हमारी जिम्मेदारी है। और भक्तों का संग मतलब क्या है? आध्यात्मिक इच्छाओं की जागृति होना। तो अभी हमें आध्यात्मिक रुचि हो या ना हो, नहीं ऐसे नहीं है, हम सबको थोड़ी बहुत आध्यात्मिक रुचि जरूर है, इसलिए हम मंदिर में आ रहे हैं, भक्तों के प्रार्थना भक्ति की विधि का पालन कर रहे हैं। पर ये हम कभी आध्यात्मिक रुचि मुझे कब मिलेगी, कब मुझे स्वाद मिलेगा हरि नाम में, कीर्तन में, ऐसे हम आकांक्षा जरूर कर सकते हैं। और हमें कभी कोई भौतिक वासना आ जाती है, काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, तो गुस्सा आ जाता है, हमको बुरा लगता है, ये क्यों है, तो ये भी अच्छा है, हमको ये त्यागना है। पर हमारा केंद्र क्या है कि इसको त्यागना या वो प्राप्त करना नहीं है। सबसे पहले क्या है, हमें आध्यात्मिक इच्छाओं की जागृति करनी है। जितनी हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं की जागृति होगी, उसके द्वारा अपने आप भौतिक जो आसक्तियां है वो कम हो जाएगी और आध्यात्मिक रुचि बढ़ जाएगी। तो भगवान कहते हैं, अभ्यास योगेन ततो मां इच्छाप्तुम धनंजय। 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, आप अभ्यास योग का पालन करो। अभ्यास योग मतलब क्या है? वही भक्ति के विधि विधान का पालन करो, भक्तों का संग करो, जप करो, कीर्तन करो, पूजा करो। इनके द्वारा क्या होना चाहिए? इसका फल यह होना चाहिए, मां इच्छाप्तुम धनंजय, आपको मेरी इच्छा प्राप्त कर, मुझे प्राप्त करने की इच्छा आपकी बढ़नी चाहिए। तो जितना ये होगा, हमारी इच्छा भगवान के प्राप्त करने की बढ़ेगी, तो अपने आप जो भौतिक इच्छा है वो चली जाएगी। तो इसीलिए हमें भक्तों का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, उन सबका उद्देश्य है कि हमें हमारी भक्ति की वृद्धि करनी है, भक्ति की वृद्धि करनी है। और उस भक्ति की वृद्धि मतलब हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़नी चाहिए। और दूसरा एक उदाहरण था स्टॉक एक्सचेंज का, दूसरा उदाहरण है अस्पताल का। जब हम अस्पताल में आते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है कि मुझे मेरी बीमारी को ठीक करना है। तो अभी अस्पताल में दूसरे लोग अलग अलग प्रकार से बीमार हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि मैं एक बार पुणे में था, तो वहां पर एक जनरल हॉस्पिटल में गया, तो मुझे थोड़ा मलेरिया था, उसके लिए हॉस्पिटल में गया। पर हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गया तो हॉस्पिटल में टीबी हो गया मुझे। तो मलेरिया 3 दिन में चला गया, पर टीबी का ट्रीटमेंट 9 महीने लेना पड़ा मुझे बाद में उसके बाद। तो काफ़ी एडवांस टीबी हो गया। तो कभी भी अस्पताल में हम ठीक होने के लिए जाते हैं, पर अस्पताल में बीमार हो सकते हैं। क्यों, क्या है, अस्पताल में अलग अलग लोग हैं। अस्पताल में अभी एक तरह से ये अस्पताल की अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो अस्पताल के एटमोसफियर को, के वातावरण को ऐसा रखे कि लोगों को बीमारी बढ़े नहीं। पर कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल में भी जर्म्स होते हैं, जो जंतुएं होते हैं, और कभी वहाँ पे बीमारी हो सकती है। तो जब हम अस्पताल में जाते हैं तो हमें भी चौकन्ना रहना है कि मुझे किससे, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो फिर उस व्यक्ति से हम अगर उसकी बीमारी हो गई तो हम उसका संग नहीं कर सकते। तो मुझे जब टीबी हो गया था तो फिर मैं लगभग 9 महीने मेरे मुँह पर मास्क लगा के बैठा था, क्योंकि वो क्या जंतु सब बाहर आते हैं। तो एक भक्त आके बोले, अभी आप जैन साधु बन गए हो। मुंह पे पट्टी लगा दी है। पर क्या है, मुझे भक्तों का ही संग करना है, भक्तों का मैं संग करना है, पर वो जरूरी है उस समय, क्योंकि हमको जंतु नहीं फैलानी है किसी में। तो ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ये एक अस्पताल की भी जिम्मेदारी है, पर ये मरीज की भी जिम्मेदारी है कि मैं जब अस्पताल में जा रहा हूँ तो फिर मुझे दूसरी बीमारी नहीं आनी चाहिए, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ठीक होने के लिए। तो उसी तरह से जो भक्ति की संस्था है, जो भक्तों का संघ है, वह वास्तव में एक अस्पताल के समान है, और यहाँ पे हम आ रहे हैं ठीक होने के लिए। पर यहाँ पे भी अलग अलग भक्त अलग अलग पार्श्वभूमि से आते हैं, उनकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, उनकी अपनी अपनी बद्धा, उनकी अपनी अपनी कमियाँ होती है। तो कभी कभी उनके संघ से हमें वो कमियाँ आ जाती है। तो ऐसे नहीं होना है, हमें भक्ति में वृद्धि करनी है। तो अगर किसी भक्तों में कुछ अनर्थ भी है तो एक तरह से वे संस्था की जिम्मेदारी है कि वो भक्तों का ज़्यादा प्रभाव दूसरे भक्तों के संग में ना हो। जैसे अस्पताल की जिम्मेदारी है कि दूसरे लोग इन्फेक्ट ना हो, पर उसके साथ साथ ये व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि ठीक है, अगर इस भक्त के संग से मुझ में क्रोध बढ़ रहा है, इस भक्त के संग से मुझ में अहंकार बढ़ रहा है, तो ऐसे नहीं है कि हम उस भक्त को बुरा कहना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार है वो, तो जब कोई बीमार होता है तो हम उसको बुरा नहीं बोलते, पर हम उस व्यक्ति से थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं ताकि मुझे बीमारी ना आए। तो हमें हमेशा हमारी चेतना के बारे में सतर्क रहना है और देखना है कि भक्तों के संग से मेरी चेतना पे क्या प्रभाव हो रहा है, और हमारी चेतना की वृद्धि की प्रगति ये हमारी जिम्मेदारी है। संस्था के स्तर पे मैनेजमेंट का ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई बहुत क्रोधी है, भक्त बहुत अहंकारी है, कोई भक्त बहुत कुछ अनर्थों से उनको प्रभावित है, तो फिर उनको ज़्यादा कुछ बड़ा इन्फ्लुएंशियल पोजिशन मूवमेंट में नहीं देना चाहिए ताकि वो दूसरों को प्रभाव कर सके। पर उसके साथ साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी है, और जब हम इस तरह से खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि मेरी प्रगति ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं भक्तों के संग में आ रहा हूँ कि मेरी भक्ति की वृद्धि हो, और मेरे भक्ति की वृद्धि के लिए है जो होगा वो मैं करूँगा, तो जिन भक्तों के संग से मुझे प्रेरणा मिलती है उन भक्तों का संग मैं अधिक करूँगा, जिस सेवा करने जो सेवा करने में मुझे रुचि मिलती है वो सेवा मैं जरूर करूँगा। अभी क्या है कि संस्था में भी ऐसे होता है कि मैं मंदिर में आऊँगा, ये गलत क्या है यहाँ पे, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, दुनिया में बहुत गलत हो रहा है, कभी कभी हमको लगता है मैं दूसरा जो गलत हो रहा है वो देखने में मुझे मैं देखो मैंने ये गलती देखी, मैंने ये गलती, हमको लगता है कि गलती देखना ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है, बाकी कोई लोग गलती नहीं देख रहे मैं देख रहा हूँ। बट कलयुग जो है ये दोषों का सागर है, तो कलयुग में दोष देखने के लिए उतनी ही बुद्धि लगती है जितना कि सागर में पानी देखने के लिए सागर में चारों ओर पानी ही है तो हाँ दोष जरूर है और दोषों को ठीक करना है, पर अगर मुझ में क्षमता है ठीक करने की ठीक है, नहीं तो फिर मुझे जो सेवा में प्रेरणा है मैं वो सेवा करूंगा और कम से कम उस क्षेत्र में मैं कुछ ठीक करते रहूंगा, बाकी क्षेत्रों में दूसरा कोई आकर ठीक कर देगा। तो जब हमारा उद्देश्य हम स्पष्ट रखते हैं मैं यहाँ पे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आया हूँ, तो फिर जो भी चीज़ें आएगी हमारे जीवन में भक्तों के संग में भी हो उससे हम विचलित नहीं हो जाएगा, उससे हम पदभ्रष्ट नहीं हो जाएंगे। हम समझे कि ये मेरे भक्त के अनुकूल भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो मैं इसको बाजू कर रखूंगा और मैं आगे प्रगति करते रहूंगा, जो मेरे प्रगति के लिए अनुकूल है मैं स्वीकार करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और इस भाव से जब हम और दूसरों को भी हमें प्रेरणा देनी है दूसरों को भी, पर हमारी क्षमता के अनुसार हम कर सकते हैं, जब हम खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि भक्तों का संग बहुत अनुकूल है। सब भक्तों का संग हर तरह से अनुकूल है ऐसे नहीं है, पर भक्ति के लिए भक्तों का संग बहुत अनुकूल है। प्रभुपाद जी, मैं एक प्रसंग के साथ यहाँ पे अंत करता हूँ। प्रभुपाद जी जब एक बार अमेरिका में थे तो उनके एक शिष्यों से मिलने आए, बोले प्रभुपाद जी जो बाकी भक्त मुझे इतना परेशान करते हैं, मुझे इतना समस्या हो रही है, मैं क्या करूँगी? प्रभुपाद जी बोले कि ये गुरु भाइयों में हमेशा होते रहता है, मेरे गुरु भाइयों ने मुझे बहुत परेशान किया। तो ऐसा जवाब तो उनको बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, तो प्रभुपाद जी बोले डोंट फोकस ऑन हाउ दे आर रिलेटिंग विथ यू, फोकस ऑन हाउ यू आर रिलेटिंग विथ योर स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब दूसरे भक्त आपसे कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं उस पर जोर मत दो, आप जोर किस पे दो, आप आपके गुरुदेव से कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, आप यहाँ पे उनकी सेवा के लिए आए हो तो आप यहाँ पे उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं ये देखो। और अपनी सेवा में अगर हम एकाग्र रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो मन है दूसरी चीज़ों से विचलित नहीं होगा, क्योंकि हमारी सेवा में हमको एक आश्रय मिल जाएगा, हमारी सेवा में हमको रुचि मिल जाएगी, हमारी सेवा से हमारी प्रगति होती रहेगी। तो इसलिए भक्तों के संग में भी हमें क्या देखना है, हाँ कई भक्त ऐसे होते हैं जो स्नेहपूर्वक आदरपूर्वक अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पर हम यहाँ पे आए किस लिए है कि हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, और हमारे कृष्ण भगवान से हमारे गुरुदेव से जो संबंध है सेवा का उसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक प्रगति होने वाली है। तो प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो शरणागत होते हैं उनका भगवान संरक्षण करते हैं। तो शरणागत होना मतलब क्या, ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारे साथ अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, नहीं, हमारी जितनी क्षमता है उस हद तक हम सेवा करते रहे और उस हद तक हम शरणागत रहेंगे और धीरे धीरे वो क्षमता बढ़ते जाएगी। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत आध्यात्मिक रुचि से नहीं होती है, शुरुआत भौतिक अनासक्ति से नहीं होती, शुरुआत ये सेवा भाव से होती है। हम सेवा भाव, थोड़ी सी सेवा करने लगते हैं, उससे थोड़ी आध्यात्मिक खुशी आने लगती है, उससे थोड़ी भौतिक अनासक्ति आने लगती है, फिर और सेवा करते हैं और वो बढ़ती जाता है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं कुछ भी सेवा नहीं कर सकता, कम से कम मंदिर में आके प्रसाद तो ग्रहण कर सकते हैं, वो भी एक सेवा है। ऑफकोर्स वो एकलौती सेवा नहीं है, हमें और भी सेवाएं करनी है, पर हम सेवा जरूर कर सकते हैं। तो अगर हम सेवा करते रहेंगे तो जो भौतिक जो प्रलोभन है, भौतिक रुचि है, वो चली जाएगी, भौतिक आसक्ति चलेगी, और आध्यात्मिक रुचि धीरे धीरे जागृत हो जाएगी, और फिर उस तरह से हमारी सेवा में ही हमें संतुष्टि मिलेगी। सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, जो भक्ति जो है तो बड़ी सुखमय है, वो जितना हम हमारी चेतना सेवा में हम आश्रित कर देंगे, उतना हम भक्ति के कैसे सुखमय है वो अनुभव कर सकते हैं। तो सारांश में आज हमने चर्चा की कि किस तरह से यहाँ पे गजेंद्र बता रहे हैं कि जो इस भौतिक जगत में वासनाएं हैं वो असह्य है, पर उनसे भगवान जो शरणागत होते हैं उनको बचा देते हैं, पर जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करते हैं वो भगवान को नहीं जान सकते। तो इसमें इससे यह प्रस्ताव सवाल आता है कि अगर हम मैं पहले भगवान की शरण लेना है, भगवान में रुचि प्राप्त करनी है, या पहले हमें भौतिक वासनाओं को छोड़ना है, तो पहले हमें क्या करना है, श्रवण करना है। श्रवण से हमें ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, और श्रवण में हम भक्तों का संग करते हैं, उसके द्वारा हमें आध्यात्मिक इच्छाएं प्राप्त होती हैं। और हम देखा कैसे कि केवल श्रवण की आसक्ति हो जाएगी तो उससे भक्ति अज्ञान की पड़ जा सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और भक्ति में वृद्धि जो है उसका कारण है भक्तों का संग, और भक्ति में अधोगति भी है वो भी कारण है उसका भक्तों का ही संग। नास्तिक लोग भी क्यों बनते हैं, भौतिकवादी लोग क्यों बनते हैं, वो देखते हैं, मतलब भक्त में या तो भक्ति बोलो जो साधारण धार्मिक लोग जो है, अगर धार्मिक लोग भौतिकवादी रहते हैं तो फिर लोग बोलते हैं धर्म का क्या फायदा है। तो उससे जो नास्तिकवाद भी बढ़ता है वो भौतिकवादी धार्मिक लोगों के कारण ही बढ़ता है। तो रिलीजियस मटीरियलिज्म इज द कॉज ऑफ मटीरियलिज्म, धार्मिक भौतिकवाद के कारण भौतिकवाद बढ़ जाता है। तो भौतिकवादी लोगों को साधारणतः अर्थ और काम में रुचि है, और वो लेखते हैं धार्मिक लोग भी धर्म इसीलिए कर रहे हैं, उनको अर्थ और काम मिलेगा इसलिए, तो बोलते हैं धर्म की जरूरत क्या है, मुझे अर्थ और काम दूसरा उसके बिना भी मिल रहा है। तो वास्तव में धर्म का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक प्रगति, अपवर्ग है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे ये मेरे जीवन का, मेरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाव ये है। धर्म से अर्थ और काम मिल जाएगा, पर वह एक बाय प्रोडक्ट है, दूसरा एडिशनल चीज है, जो और चीजें मिले, प्रधान है आध्यात्मिक प्रगति। और अगर ऐसे नहीं करते तो बहुत से लोग आजकल समाज में आध्यात्मिक चीजों के रुचि है पर धार्मिक चीजों के प्रति रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं धार्मिक लोग ज्यादा आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिकवादी ही है। इसीलिए हम धार्मिक संस्था में भी आते हैं तो केवल धार्मिक संस्था में आके हमारी प्रगति नहीं होती है, धार्मिक संस्था में आके जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उनके संग से हमारी प्रगति होती है। और संग का अर्थ मतलब प्रधान रूप से क्या है कि इच्छाओं का प्राप्त होना, ट्रांसफर, इच्छाओं को प्राप्त करना। तो हमने देखा कि भक्ति में प्रगति करने के लिए इच्छाओं को त्यागना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इच्छाओं को स्वीकार करना। भौतिक इच्छाओं को त्यागना है हमें, तो उससे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक इच्छाओं को स्वीकार करना। प्रभुपाद जी के बारे में हमने देखा कैसे काफी विस्तारित से कि कितने संघर्ष के बावजूद बिना किसी सुविधा के जब उन्हें प्रचार शुरू किया तो क्यों कर पाए वो इतना संघर्ष, क्योंकि अपने गुरुदेव के आदेश पालन करने की इच्छा बड़ी प्रबल थी। तो वैराग्य था, पर वैराग्य से महत्वपूर्ण उनकी जो इच्छा थी आध्यात्मिक वो बड़ी प्रबल थी। तो हम हमारी इच्छाओं को बाहर नहीं ढकेल सकते हैं, पर हम उनको हमारे आध्यात्मिक इच्छाओं से भर लेंगे तो वो चली जाएगी बाहर। हम किसी चीज़ को सोच सकते हैं मैं इसके बारे में इसको स्पर्श नहीं करूँगा, पर मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं, उसमें ही हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए हमें किसी और चीज़ जो हम सोच सकते हैं उसको हमारे जीवन में लाना है। तो भक्तों के संग में हमें भक्ति की इच्छाओं को जागृत करना है। इसके लिए दो उदाहरण दिए, एक है स्टॉक एक्सचेंज का। उस स्टॉक एक्सचेंज में लोग जाते हैं अपने पैसा बढ़ाने के लिए, और बढ़ सकता है पैसा, पर वो पैसा बढ़ाना व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है, और अच्छे दलाल के साथ संबंध जुड़ा के अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। वैसे ही हम जब मंदिर में आते हैं, धार्मिक संस्था में आते हैं, हमारी भक्ति की जो अभी स्टॉक है हमारा, उसको हमें बढ़ाना है। पर वह कभी हम गंवा भी सकते हैं, वो वैसे के वैसे रह सकता है या वो बढ़ सकता है उचित संघ के कारण। तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी है। वैसे ही अगर हम भक्ति का संघ, भक्तों का संघ है, धार्मिक संस्था, ये एक अस्पताल के समान है। तो कभी अस्पताल में हमारी बीमारी बढ़ भी सकती है अगर हम किसी बीमार व्यक्ति से संघ कर ले। तो वैसे धार्मिक संस्था में आके भी लोगों का अनर्थ बढ़ सकता है कभी कभी, बहुत जरूरी होना नहीं चाहिए वैसे पर। और यह बहुत व्यक्ति की और संस्था की दोनों की जिम्मेदारी है। तो हम मंदिर में आते हैं उन भक्तों का संग करते हैं जिनके द्वारा हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं की वृद्धि होती है, और ऐसे संघ से हम प्रगति करेंगे। और ऐसे संघ के द्वारा जितनी हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ जाएगी तो हमें आध्यात्मिक रुचि मिलेगी और भौतिक रुचि चली जाएगी भौतिक, और उस तरह से भक्ति और सुखम बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सम क्वेश्चन क्वेश्चन ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।